ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 7 अध्याय 13। अध्याय का नाम है सिद्ध पुरुष का आचरण। तो 1 से लेकर के 5 तक इसको हम जो है पढ़ेंगे। 5 में मैं तात्पर्य दिया है तो उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्री नारदो वाच। हम लोग मैं पढ़ता हूं क्योंकि बहुत समय हो जाएगा इसलिए मैं पढ़ता हूं। कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य देह मात्रावशेषितः ग्रामैक रात्र विदिना निरपेक्ष चरेन महि। श्री नारद मुनि ने कहा जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकने में सक्षम हो उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए और शरीर को उस योग्य बनाए रखकर उसे प्रत्येक गांव में केवल एक रात बिताते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार सन्यासी को शरीर की आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर रहे बिना सारे संसार में विचरण करना चाहिए। बिभ्रयाद्यत असौ वास कोपी नाच्छादनं परं त्यक्तं न लिंगात दण्डात् अच्छा दंड आदे अन्यत किंचित नाम पदी। संन्यास धारण किए हुए व्यक्ति को अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्र तक का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे कुछ पहनना ही पड़े तो उसे कोपिन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पहनना चाहिए। यदि आवश्यक न हो तो सन्यासी को दंड भी नहीं धारण करना चाहिए। सन्यासी को दंड तथा कमंडल के अतिरिक्त कुछ भी साथ में नहीं रखना चाहिए। एक एव चरेत विच्छु आत्मा रामो अनपाश्रय सर्वभूत स्वरच शांतो नारायण परायण। आत्मतुष्ट सन्यासी को चाहिए कि वह द्वार द्वार से भीख मांगकर जीवन यापन करे, किसी व्यक्ति या स्थान पर आश्रित न रहकर उसे समस्त जीवों का सुहृद होना चाहिए। उसे नारायण का शांत अनन्य भक्त होना चाहिए। इस प्रकार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए। पश्येत आत्मन्यदो विश्वम परे सदा सतो व्यये आत्मानं च परम ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये। सन्यासी को चाहिए कि वह परम पुरुष को प्रत्येक वस्तु में सदा व्याप्त देखने का प्रयास करे और प्रत्येक वस्तु को जिसमें यह ब्रह्मांड भी है को परम पुरुष पर टिका देखे। तो ये 4 श्लोक है जो एक सन्यासी को कैसा आचरण करना चाहिए उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो तो पांचवें श्लोक को भी हम पढ़ते हैं। सुक्ति प्रबोधयो संध्या संध्यौ, पांचवा श्लोक आप लोग दोहराएंगे पांचला। सुक्ति प्रबोधयो संध्यौ, आत्मनो गतिमात्मदृक्, आत्मनो गतिमात्मदृक्, पश्यन् बंधम च मोक्षम च, पश्यन् बंधम च मोक्षम च, माया मात्रं न वस्तुतः, माया मात्रं न वस्तुतः, सुप्ति प्रबोधयो संध्यौ, आत्मनो गति आत्मदृक्, पश्यन् बंधम च मोक्षम च, माया मात्रं न वस्तुतः, माया मात्रं न वस्तुतः। आप लोग दोहराएंगे। सभी एक साथ मिलकर के बोल दो, सभी एक साथ मिलकर बोल दो। शब्दार्थ, सुप्ति अचेतनावस्था में, प्रबोधयो चेतनावस्था में, संधौ संधि अवस्था में, आत्मनः अपनी आत्मा में, गति गति आत्मदृक् जो आत्मा को देख सकता है, पश्यन् देखने या समझने का प्रयास करते हुए, बंधम जीवन की बद्ध अवस्था, च मोक्षम तथा जीवन की मुक्त अवस्था, च भी माया मात्रम मात्र मोह, न वस्तुतः नहीं है वास्तव में। अनुवाद हो तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, उसे अचेत अवस्था एवं चेतन अवस्था में तथा इन दोनों के बीच की अवस्था में अर्थात संधि की अवस्था में अपने आप को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, आत्म स्थित होना चाहिए। इस प्रकार उसे यह अनुभव करना चाहिए कि जीवन की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाएं मात्र भ्रम है, वे वास्तविक तथ्य नहीं है। ऐसे उच्च ज्ञान से उसे सर्वव्यापी परम सत्य का दर्शन करना चाहिए। तात्पर्य, अचेतना अवस्था अज्ञान, अंधकार या भौतिक जगत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चेतन अवस्था में मनुष्य जागृत रहता है। अचेतना तथा चेतना दोनों की मध्य अवस्था का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं रहता। अतएव जो व्यक्ति अपने को समझने में प्रगत है, उसे यह समझ लेना चाहिए कि अचेतन तथा चेतन मात्र भ्रम है, क्योंकि मूलतः इसका अस्तित्व नहीं होता, केवल परम सत्य का ही अस्तित्व है। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता 9:4 में पुष्टि की है, मया तत इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि नाचाहं तेषु अवस्थिता। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मुझसे व्याप्त है, सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्येक वस्तु कृष्ण के निराकार रूप के आधार पर विद्यमान रहती है। कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं रह सकता। अतएव कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त भगवान को बिना भ्रम के सर्वत्र देख सकता है। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना सलाकया चच्छु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रशभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। आराध्यौ भगवान ब्रजेश तनय तत धाम वृंदावनम रम्या कांचित उपासना ब्रज वधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरौ न परः। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दीन तारणम। भूतैरमहद्वेयः इमां पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सोलंकर शिष्ट भगवान वचांसि मे। सोलंकर शिष्ट भगवान वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। इसकी चाबी है उसका क्या नाम एक गद्दी थी ना इधर किसी का थोड़ा देख है क्या गद्दी है क्या शायद इसमें इधर वो देख ठीक है थैंक यू। तो ये जो प्रसंग चल रहा है सिद्ध पुरुषों का आचरण बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और देखा जाए तो भगवान ने जो चार वर्ण और चार जो आश्रम बनाए हैं इसी अवस्था तक पहुंचने के लिए ही बनाए हैं। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता है तब तक देखा जाए तो भागवत समझने का पात्र ही नहीं बनता है। भागवत को समझने के लिए भागवत अवस्था में ही होना चाहिए जिसको सिद्ध अवस्था यहां कहा गया है। इसलिए महाप्रभु ने कहा था भागवत पढ़ो भागवत स्थान है। भागवत को समझने के लिए भागवत ही होना चाहिए। तो इसलिए ये जो अवस्था है सभी के लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है और प्रयास करना चाहिए हम सभी को इसके लिए इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में दिए हैं कि जो सॉरी श्रीधर स्वामी बताए हैं कि जो जो सिद्धावस्था है इसी अवस्था में जो है व्यक्ति क्या कर सकता है, श्रीमद् भागवत को ठीक से समझ सकता, मतलब रियलाइजेशन कर सकता है। श्रीमद् का भागवत का ज्ञान होना अलग चीज है, लेकिन उसका रियलाइजेशन होना वो अलग चीज है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि ज्ञानम ते अहम सब विज्ञान, ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं केवल ज्ञान ही नहीं है, ये क्या है, विज्ञान है, साइंस है। आप इसको रियलाइज करेंगे, अनुभव करेंगे, आपको साक्षात्कार होगा। तो इसलिए साक्षात्कार करने के लिए इस अवस्था तक पहुंचना ही जरूरी है। इसलिए कहा गया है पीवत भागवतम रस आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पीवतम भागवतम रस आलयम, रस आलयम पीवत अर्थात इस रस के आलय को वो ही पीते हैं। कौन पीते हैं? बार बार मुंह, अगेन एंड अगेन बार बार वो ही पीते हैं रसिका, जो रसिक है अर्थात जो अनुभव कर रहे हैं, जिनको साक्षात्कार हो रहा है, वो ही इस भागवत को बार बार पिएंगे और उन्हीं को रसिक कहा गया। जब तक हम रसिक नहीं बनेंगे तब तक भागवत का आस्वादन ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोलो हरे कृष्णा। तो इसलिए रसिक क्या है? तो रसिक वो है, जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे किसी को प्यास नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं परिक्रमा मार्ग में जो है प्याऊं लगी रहती हैं, तो प्याऊ लग रहती है, वो बहुत बुलाता है, प्रभु जी प्लीज पी लीजिए ना, पानी पी लो, अरे बोल पानी पी लो, पानी पी लो है। तो कभी कभी तो उनकी तरफ देखते भी नहीं है, क्यों प्यास नहीं है हमें, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी देखते नहीं है, उनको चले जाते हैं। और ज्यादा ही रिक्वेस्ट कर रहा है तो कभी कभी चले भी जाते हैं, तो पहले देखते हैं पानी कैसा है, साफ सुथरा है कि नहीं है, फिर देखते वो व्यक्ति विशेष कैसा है, गंदा संदा तो नहीं, होता है कि नहीं होता है। और जो है फिर हम जो है जबरदस्ती एक दो घूंट पी करके अरे बोल करके निकल लेते हैं, होता है कि नहीं होता है। लेकिन हमें प्यास लगी हो, तो प्यास लगी है तो हम खुद खोज के आ जाते हैं कि पानी कहाँ, और तुरंत जाके उसके बुलाने से पहले हम ओक मार के खड़े हो जाते हैं, अरे बोल पानी पिलाओ थोड़ा, और गट 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 करके खूब दूर दरा करके पानी पी जाते हैं। न उसके मटके को देखा, न उसकी शक्ल को देखा, न किस पात्र से पिला दिया हमें उसको देखा। ठीक ऐसा ही जो रसिक है, रसिक भक्त जो है ये सुविधाएं या और दूसरी चीजें नहीं देखते हैं, उनको भागवत कथा में रस आता है। इसलिए जिसको रस आएगा उसको निद्रा नहीं आएगी, और जिसको रस नहीं आएगा उसको क्या आएगी, कुछ न कुछ तो आना चाहिए ना, या तो रस आना चाहिए, निद्रा आनी चाहिए। तो रस बोलता है कि भाई मैं तो नहीं आ सकता, तो निद्रा बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ, क्यों कभी स्वागत तो करना है अतिथि को, क्योंकि आप लोग घर छोड़ छाड़ के आए हैं, तो किसी न किसी को तो स्वागत के लिए होना चाहिए ना उधर। तो इसलिए देखती है भाई जो रसिक है तो उनको निद्रा देवी बिल्कुल टच नहीं करती है, लेकिन जो नहीं रसिक है तो उनको निद्रा देवी टच करती है। इसलिए यहां बताया गया है त्रयोदशे यते धर्म समा साधकस्य उच्यते महान। त्रयोदशे, त्रयोदश अध्याय में यते धर्म, यति का धर्म, एक सन्यासी का धर्म, एक विरक्त का धर्म, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है उसका जो धर्म है उसके बारे में निरूपण किया गया है। साधकस्य उच्यते महान, मतलब जो प्रवेश किया है उस सिद्ध अवस्था में तो उसे कौन सी क्वालिटियां अर्जित करना है, उसको कैसे साधना करना चाहिए, किन गुणों को अर्जित करना चाहिए, तो इसके बारे में जो है, जिससे पूर्ण सिद्धावस्था को हासिल करे, तो इसके बारे में जो है यहाँ जानकारी दी गई है 13वें अध्याय में। अवधूत ऐतिहासेन एवं ध्यात्वा कल्पो अनसन आदिकम कुर्यात्। अवधूत इतिहासेन, तो आगे चल करके एक अवधूत का इतिहास बताया जाएगा, उसका दृष्टांत दिया जाएगा। और ये अवधूत कौन होगा? भगवान दत्तात्रेय है, दत्तात्रेय का प्रसंग आएगा, आप देखेंगे दत्तात्रेय के प्रसंग में देखेंगे है? कोई चिंता नहीं है, न खाने की चिंता न पीने की चिंता, फिर भी मस्त है। यही तो आश्चर्य देख करके प्रहलाद उनसे प्रश्न करेंगे कि भाई हम लोग जो है इतनी खाने पीने की इतनी सुविधा करते हैं, इतनी व्यवस्था करते हैं, पूरा जीवन तो इसी में निकल जाता है, और फिर भी देखो मरे गिरे से जो है क्या क्या कितने रोग, क्या हालत खराब हो रही है हमारी, और इधर देखो कोई चिंता नहीं है, कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा कोई चिंता नहीं है, एकांत में पड़े हैं फिर भी शरीर इतना हष्टपुष्ट, ये देख करके तो उन्होंने प्रश्न कर दिया है। तो आगे उसकी हम चर्चा सुनेंगे। तो ये जो है अवधूत इतिहासेन एवं धात्वा कल्पो अनसम आदित्यम कुर्वात। एवं धात्वा मतलब जो इस अवधूत अवस्था को जो धारण करता है, कल्पो असन आदिकम कुर्यात, उसको जो है कल्पो अनसन अर्थात सन्यास की अभ्यास, सन्यास की प्रक्रिया, सन्यास का अभ्यास धीरे धीरे उसको क्या करना चाहिए, करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए उसको। जैसे ब्रह्मचारी है तो उनको जरूरत नहीं गृहस्थ बने, लेकिन जिनको जरूरत लगती है तो बन सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए और ब्रह्मचारिणी को शादी कर लेना चाहिए। तो जब ब्रह्मचारी शादी नहीं करेंगे तो ब्रह्मचारी किससे शादी करेंगे? तो जो शादी करना चाहते हैं उससे शादी करें। तो इसलिए इसके बाद में जो है ग्रस्त के बाद में फिर तीसरी जो अवस्था है, जिसके बारे हम पिछले अध्याय में सुने हैं, जिसके बारे में जो है बताया जा रहा है कि जो जो व्यक्ति जो है, क्या नाम है, जो वानप्रस्थ के वानप्रस्थ के जीवन से जो कैसा हो चुका है, धीरे धीरे करके विरक्त हो चुका है, और जिसे जो है ब्रह्म साक्षात्कार के लिए उसकी क्या है, उसकी रुचि जागृत हो रही है, और ब्रह्म साक्षात्कार की उसकी रुचि जागृत है, तो उसे क्या करना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके ग्रस्त आश्रम का परित्याग करना चाहिए। जहां अभी हम सुनेंगे कैसे जो है, तो ग्रस्ताश्रम का परित्याग करना चाहिए और फिर उसे इस सन्यास आश्रम का अभ्यास करना चाहिए, सन्यासी बनना चाहिए। कम से कम कपड़े से नहीं तो कम से कम मन से तो होना ही चाहिए। अभी बहुत से सोच रहे होंगे जी हमारी अवस्था तो पूरी निकल गई, अब क्या करेंगे, अब कब सन्यासी बनेंगे हम, कोई 70 साल कोई 75 साल को गए तो उनको सन्यासी कैसे बनेंगे वो, तो उनको मन से प्रयास करना चाहिए कि उस लाइफ को अभी ग्रस्त जीवन में भी रह करके उसको सन्यासी लाइफ जीना चाहिए, सन्यासियों का जीवन यापन करना चाहिए, ज्यादा घर में नहीं रहना चाहिए। जो भी है आप लोग जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो उसको फिर क्या करना है, आनविच्छिक्याम कल्पः तु एवं ध्यात्वा परिव्रजेति संबंध। अनविच्छिक्याम कल्पः तु एवं ध्यात्वा परिव्रजेति संबंध। जो सन्यास है, सन्यास का मतलब यहां बताया गया है, उसको धारण करना चाहिए परिव्रजेति संबंध, परिव्रजाचार्य, परिव्रजाचार्य है ना, परिव्रजाचार्य, परिव्रजाचार्य का मतलब होता है जैसे चार अवस्था होती है सन्यासी की, कौन कौन सी है, कुटीचक, बहुदक, हंस और परिव्रजाचार्य और हंस और परमसायत, हंस परिव्यचार तीसरी अवस्था, परमहंस चौथी, चौथी अवस्था है परमहंस अवस्था जो है, उसको चार अवस्था में जैसे गुजरना चाहिए। तो ये जो अभी हमारी जो अवस्था है ये बहुधक मतलब कुटीचक, कुटीचक का मतलब होता है कुटिया बना के रहना। यदि आप फूल प्रवराज मतलब घूम नहीं सकते हैं, भ्रमण नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम क्या करें, गांव के नजदीक, गांव में नहीं, गांव से थोड़ा हट करके, और उसको क्या करना चाहिए, कुटिया बनाना चाहिए। और इस प्रकार जो है वहां से गांव से मांग करके थोड़ा सा अपना भरण पोषण करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और बहुधक मतलब जो क्या नाम है, और उसको कुछ स्टॉक कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत तो स्टॉक कर सकता है। बहुधक जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको जो है मांगना नहीं चाहिए। खेती कटती है तो जो कुछ टपक जाता है नीचे उसको उसको जो है उन दाने को बीनना चाहिए, दाना बीन करके बस उसी से जो है उसको भरण पोषण करना चाहिए। और तीसरी अवस्था जो है वो परिव्रजाचार की है, उसमें उसको क्या करना चाहिए, फिर कहीं रुकना नहीं चाहिए, उसको घूमते रहना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। और चौथी अवस्था जो परमहंस अवस्था है, उसमें जो है उसको जो है भगवत चिंतन करना चाहिए। उस अवस्था में जो है एक अवस्था में जो है बैठ करके, और उसको जो है फिर उसको शरीर का कोई होश नहीं रहता है, उसकी क्रियाओं का भी कोई होश नहीं रहता है। तो ओलो लेवल है सबसे टॉप मोस्ट लेवल है। अब वो लेवल तो मालूम नहीं हम लोगों के लिए संभव है कि नहीं, लेकिन कुछ हमें जहां तक संभव हो उतना जाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका जो है ये जो सिद्ध अवस्था का मतलब होता है उसे कहां तक, परिव्रजाचार तक है, परिव्रजेति संबंध, उसे भ्रमण करते रहना चाहिए, रहना नहीं चाहिए एक स्थान में। कियत अत्र त्याज्य है, उसे क्या त्याग करना चाहिए, कुछ सामान लेकर के भ्रमण करना चाहिए, कुछ लगेज होना चाहिए, कुछ बैग होना चाहिए खाने पीने का। बोला नहीं नहीं, देह व्यतिरिक्तम एवं इति आह, देह मात्रे से तस्य धर्मान आह, अर्थात देह को लेकर के मात्र चलना चाहिए और कुछ भी नहीं। कपड़े लत्ते, बोला कपड़े लत्ते पहनना ही नहीं है तो कपड़े लत्ते लेकर के करोगे क्या, कपड़े लत्ते भी नहीं होने चाहिए, कपड़े भी नहीं होना चाहिए। आह भ्रामयिक रात्रेति नभि, और इस प्रकार उसको क्या करना चाहिए, भ्रामयिक भ्रमण करना चाहिए, रात्रेति नभि, रात्रि एव नभि, मतलब एक रात्रि एक स्थान पर, दूसरी रात्रि दूसरे स्थान पर, इस प्रकार उसको जो है एक करना चाहिए। इसको बोलते हैं सिद्धावस्था, धीरे धीरे करके सिद्धावस्था की प्रैक्टिस है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा इस श्लोक के अनुसार, आपकी घड़ी तो बहुत दौड़ रही है लेकिन हम कहां तक दौड़ पाएंगे तो मालूम है। तो पहला श्लोक है, निकालेंगे ना पहला श्लोक, श्री नारद उवाच, पहला श्लोक, कलपस्त्वेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ग्रामैकरात्रविदिना निरपेक्षचरेन्महि। कलप तु एवं परिव्रज्य, अर्थात ये नारद और किसका प्रसंग चल रहा है, युधिष्ठिर महाराज का प्रसंग चल रहा है। तो नारद जी जो है युधिष्ठिर महाराज को एक जो है पूर्ण जो क्या नाम है वर्णाश्रम की जो पद्धति है उसका जो है एक सिद्धांत से विधि से क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो अभी जो है वर्णन कर चुके हैं ब्रह्मचारी का, वर्णन कर चुके हैं गृहस्थ का, वर्णन कर चुके हैं वानप्रस्थी का, हो गया। अब किसका वर्णन चल रहा है, ये अब सन्यासी का वर्णन चल रहा है। तो सन्यासी के बारे में बोल रहे हैं, कल्पतु एवः, कल्पतु एवं परिव्रज्यः, जो सन्यासी है उसको क्या करना चाहिए, परिव्रज्यः, उसको जो है कहीं एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए, उसको भ्रमण करते रहना चाहिए। परिब्रज होना चाहिए, उसको घूमते रहना चाहिए। और देह मात्रा अवशेषित, देह मात्र, मात्र देह को लेकर के उसे जो है रहना चाहिए, क्योंकि आप सामान लेंगे कुछ लेंगे तो उसको संभालना वो करना ये भजन में बाधा होगा। हम लोग तो बैग क्या क्या संभाल लेते हैं, कोई भजन में बाधा नहीं होता। इसका मतलब हम लोग बहुत एडवांस हैं, हम बैग क्या क्या लेकर के भी फिर भजन कर लेते हैं, है? होता है कि नहीं होता है। लेकिन नारद जी बोल रहे हैं कि जो है उनको कुछ नहीं लेना है, कपड़े लत्ते कौन धोएगा, कपड़े लत्ते कहाँ धोने के लिए समय जाएगा फिर, है? अरे भाई कुछ तो लेना पड़ेगा, तो आगे देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो देह मात्र अवशेष, केवल अवशेष शेष के रूप में देह रहनी चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए उनके पास में। ग्रामिक रात्र विधिना, मतलब एक रात्रि एक गांव में उसे क्या करना चाहिए, बितानी चाहिए। और निरपेक्ष चरेन मही, और उसको कैसे रहना चाहिए, निरअपेक्ष, अपेक्ष नि, मतलब किसी चीज की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किस गांव से जो है अभी थोड़ा गर्मी है तो थोड़ा क्या नाम है छाछ मिल जाए, या थोड़ा सा कम चलाया हुआ मक्खनदार दही, थोड़ा हद कुचला क्या बोलते हैं दही मिल जाए, तो वो सब चीज के लिए नहीं होना चाहिए एक सन्यासी को। मतलब उसकी निरअपेक्ष चरेन मही, चरेन मही, मही मतलब पृथ्वी, चरेन का मतलब विचरण करना, उसको क्या करते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए पृथ्वी पर, घूमते रहना चाहिए। इसका मतलब है कि उसे ज्यादा शहरों में या गांवों में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ए जो है इस प्रकार, और आगे बोल रहे हैं, बिभ्रयात यदि असौ वासः कोपी न आच्छादनम परम त्यक्त्यम न लिंगादंडात् लिंगदंडात् दंड आदे, अच्छा त्यक्तम न लिंग दंडा दे अन्यत किंचित अनापदी। बिभ्रयात यदि असौ वासः, यदि ऐसा लगता है कि कुछ कपड़े तो होना ही चाहिए, ऐसा लगता है कि कुछ कपड़े तो होना ही चाहिए, तो बोलते हैं कोपीन आच्छादनम परम, एकमात्र दो कोपीन ले सकते हैं बस, और कोई कपड़ा नहीं चाहिए। इसमें जो है क्या नाम, श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कोपीन के लिए, कोपीन गुह्यम आच्छादते यावता तावन मात्रम परम केवलम अन्यात वा त्यक्तः। कोपीन गुह्य आच्छादते यावता, यावता मतलब किसके लिए कोपीन लेना है, केवल गुप्त स्थानों को रखने के लिए। तावन मात्रम परे केवल, परम केवल मतलब उसी के लिए ही बस एक कोपीन ले सकते हैं, अन्यात वा त्यक्ता। और बोले हैं कि कभी जो है जरूरत पानी वानी नहीं है तो कोपीन को भी छोड़ देना चाहिए, कोपीन भी नहीं लेना चाहिए। हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। मुझे तो ऐसा लगा आप सब लोग उसमें चले गए हैं कि आप कोपिन पहन के ही घूम रहे हैं सब समाधिस्त तो हो गए थे, सब कुछ सब प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए कम से कम सपने में, जैसे भी हो प्रैक्टिस तो होना चाहिए। तो ये जो है कोपिन के बारे में बताया है, तो जरूरत पड़े तो केवल आप कोपिन ले सकते हैं। त्यक्तम न लिंग दंडा, लिंग लिंगात दंड आदे, अर्थात त्यक्तम मतलब त्याग कर देना चाहिए, किसका कर देना चाहिए त्याग, त्यक्तम न, अच्छा मतलब त्याग नहीं करना है, किसका, लिंगात दंड आदे, जो सन्यासी के जो पहचान है, लिंग मतलब पहचान जिसको बोलते हैं, सन्यासी की पहचान क्या है, त्रिदंड आदि होना, कमंडल होना, ये पहचान है। तो उसको क्या करना चाहिए, जरूरत ऐसे लगता है कि ये होना ही चाहिए तो वो ले सकता है, दो चीज ले सकता है, अन्यत किंचित अन्न दापपि, लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि यदि ये भी भारी पड़ रहे हो, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डंडा को लेकर के कहां घूमते फिरेंगे यार, है मतलब भारी नहीं होना चाहिए उसको संभालने के लिए, जरूरत पड़े तो डंडा को भी और उसको भी क्या कर सकते हैं, कमंडल को भी त्यक्त कर सकते हैं, है उसके भी जो है कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए त्यक्तम न लिंगात दंड आदे अन्यत, मतलब उसको जो है हालांकि दंड का उसका त्याग नहीं करना है, लेकिन जरूरत पड़े तो त्याग भी सकता है, ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, सब बातों के पीछे क्या कहना चाहते हैं कोई बताएगा, मतलब नारद जी क्या बताना चाहते हैं? नारद जी ये बताना चाहते हैं कि भजन ही जरूरी है और संसार में कुछ भी जरूरी नहीं है। भजन में यदि ये भी यदि बाधक बनते हैं तो इनका भी हम त्याग कर सकते हैं। और किंचित अनापदी, यदि ये भी यदि विपत्ति रहित संबंध, मतलब कष्ट नहीं दे रहे, सामान्य में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तब इनको रखेंगे, अन्यथा ये भी त्याग कर सकते हैं। तो ये बात जो है दूसरे श्लोक में हो गई। अब तीसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं, तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं बात तो अच्छी अच्छी है, अब देखो हम कितना उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। एक एव चरेत भिक्षु आत्म आराम अनाप अनपाश्रय सर्वभूत सुहृद शांत नारायण परायण। एक एव चरेत भिक्षु, उस भिक्षु को मतलब क्या करना चाहिए, भिक्षु जीवन व्यतीत करना चाहिए, भिक्षु मतलब भिक्षा करके जाना चाहिए, घर से एक दो घर से भिक्षा मांग लेना चाहिए। और एक एवह, एक एवह चरेत, और उसे अकेला ही घूमना चाहिए और कोई दूसरा साथ में नहीं होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, एक एव चरेत भिक्षु आत्म आराम अनपाश्रय, आत्म आराम, आत्म आराम मतलब आत्माराम, आत्माराम का मतलब जो कुछ भी मिलता है उसी से संतुष्ट हो जाना है, कुछ भी जो है उसको और डिजायर मतलब कुछ चाह नहीं रखनी चाहिए कि थोड़ा और मिल जाता, थोड़ा ये चीज और मिल जाता तो और अच्छा था, जो मिल गया आत उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। और शांत है आत्म आराम है, और क्या है अनाप अनपाश्रय, अनप आश्रय, अन्य किसी चीज की याचिका नहीं करना चाहिए, जो भगवत प्रेरणा से मतलब भगवत प्रेरणा से एक उचित समय पर जो वस्तु मिल गई है बस उसे ग्रहण करना चाहिए, इसके बाद में और एक्स्ट्रा जो है उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए उसको। अनपाश्रय मतलब और किसी चीज का आश्रय और किसी चाह नहीं रखना चाहिए। और क्या है, सर्वभूत सुहृद शांत, सर्वभूत सुहृद, और विशेष करके उसको कैसा होना चाहिए, सर्वभूत सुहृद, सर्वभूत सुहृद कैसे होंगे, जब भाई गांव में ही जाएंगे या गांव नहीं जाएंगे या शहर में नहीं जाएंगे तो सर्वभूत सुहृद कैसे होंगे, तो उसे जो है यहां बताया जा रहा है कि सर्वभूत सुहृद का मतलब होता है कि उसे प्रचार में लगना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, आगे देखेंगे आएगा, उसको क्या करना चाहिए, सर्वभूत सुहृद कौन है, सर्वभूत सुहृद वो ही हो सकता है जो प्रचार भजन कर रहा है, और जो भजन कर रहा है वो प्रचार अवश्य ही करता है, जो भजन करता है वो प्रचार करेगा। तो इसलिए यहां जो है कहा जा रहा है कि उसको कैसा होना चाहिए, उसे जो है प्रचारक होना चाहिए, प्रचारक होना चाहिए। क्यों क्यों है? तो सर्वभूत स्वीकृत, हर एक का हितैषी होना चाहिए। हितैषी कैसे करेंगे? हितैष किसका करेंगे? तो हित किसी का करना है तो जो सही हित है वो भक्त बनाना चाहिए, उसको भक्ति में जोड़ देना चाहिए। सर्वभूत सुहृत, सबका मतलब हितैषी बनने के लिए उसको क्या करना होगा? प्रचार करना चाहिए। और इसलिए गोपियां बोलती हैं इस बात को प्रूफ करने के लिए, सर्वभूत सुहृत मतलब ये बहुत अच्छा गुण है। और ये गुण जो है भक्तों में ही आ सकता है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुण तत्र समासते सुरा, तत्र सर्वै गुण समासते सुरा। भगवत जो गुण है, देवी जो गुण है, वही समाते हैं, वही आते हैं जो भक्ति करता है, जो भजन में लगा हुआ। और जो भजत भक्त है वो सर्वभूत सुहृदय होता है। और सर्वभूत सुहृदय का मतलब होता है जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है कि वो जो है प्रचार करता है। तो इसलिए तब कथा अमृतम ताप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदात तम भुवि गृणन्ति ये भूरिदाजना। तो भुवि गृणन्ति ये भूरिदाजना, भूरिदाजन जन भूरिदा, वो ही सबके जन मतलब वो भक्त जो है सुहृत हो सकते हैं। वो क्या करते हैं? दान करते हैं, दान देते रहते हैं। अरे भाई आप क्या बात कर रहे हो भाई, दान देते रहते हैं, लंगोटी के अलावा उस पर कुछ है नहीं, वो क्या दान करेगा है? क्या दान करेगा भाई, लंगोटी के अलावा बॉसों के पास तो बहुत कुछ है, कई बैंकों में पड़ा है माल। तो उसको क्या करना चाहिए, किसका दान करना चाहिए? सन्यासी को कथा का है। तब कथा अमृतम, जो आपकी कथा अमरता को देने वाली है, व्यक्ति को यही अमर बना सकती है। जो कथा का दान करता है वास्तव में एक कथा व्यक्ति को अमर बनाती है, मरने नहीं देती है। और तप्त जीवनम, जो संसार में तप्त दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं, परिदहियत जो प्रकृष्ट रूप से दहन हो रहे हैं, उनके जीवन में भी शीतलता ये कथा प्रदान करती है। ये ध्यान से सुन लेना चाहिए, कथा ही शीतलता मतलब प्रदान करेगी। संसार के अंदर और कोई चीज शीतलता दे ही नहीं सकती है। धन शीतलता देगा है? धन से तो और जो है ताप बढ़ जाता है, धन आ जाता है तो ताप बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? जब खाली जेब रहती है तो खूब माइनस में चलता है, क्या नाम है, टेम्परेचर है। लेकिन जैसे ही जेब थोड़ा बड़ी होने लगती है तो फिर प्लस में आ जाता है और फिर हाई हायर ऊपर ऊपर बढ़ता ही रहता है। हरे कृष्णा। तो ये बात जो है बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए, उनको कथा अमृत का दान करना चाहिए। कथा अमृत है ये है? और हर व्यक्ति जल के मर रहा है, संसार में तड़प रहा है, तो उसको दान करो, जीवन दान दो। कैसे जीवन दान देंगे? इस कथा के द्वारा जीवन दान दो। एक कथा ही उसको जो है जीवन दान दे सकती है। और गोपियां दे बोलती हैं कि जो कथा का दान कर रहा है भूरिदा, उससे बढ़कर के संसार में और कोई दानी नहीं है। ते जना भूरिदा, वो जन कैसे हैं? सबसे बड़े दानी। तो इसलिए यहां जो है बताया जा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, सुहृत होना चाहिए और शांत होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। शांत तभी होगा, कृष्ण भक्त निष्काम, जब निष्काम होंगे तब शांत होंगे। जब तक निष्कामता नहीं आएगी तो शांत हो सकते हम कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी शांत। तो भक्तों को निष्काम होना चाहिए। क्योंकि उनको जो है आगे विशेषण दे रहे हैं नारायण परायण, उसको नारायण के परायण होना चाहिए, उसका 2400 घंटे भगवान नारायण की सेवा में व्यतीत होना चाहिए। जो पूर्ण रूप से अपना समय भगवान नारायण की सेवा में दे रहा है वो शांत हो जाएगा, वो केवल शांत होगा। अन्यथा जो नारायण की सेवा में नहीं है, नारायण परायण नहीं है, वो कभी शांत हो ही नहीं सकते। हरे कृष्णा, मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, सब सर से ऊपर जा रही है, आप बात क्या कर रहे हैं। ये तो भाई नारद जी बोल रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो जी घर गृहस्थी हमारे लिए तो इतना महत्वपूर्ण नहीं, नहीं, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और गृहस्थ के लिए भी जो है नारायण परायण बनना चाहिए उसको, ऐसा नहीं है कि गृहस्थों के लिए सब चीज की कुछ छूट है, नहीं नहीं छूट नहीं। तो इस प्रकार जो है उनको क्या करना चाहिए, शांत होना चाहिए और नारायण परायण परायण है, भगवान नारायण के परायण होना चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण के जो परायण होता है वो ही नारायण परायण होते हैं, जो पूर्ण रूप से नारायण पर आश्रित है। क्या है, रक्षेति कृष्ण रक्षेति इति विश्वासो गोत्रप्ते वरणम तथा, गोत्रप्त वरणम तथा, वरण कर लो उनको, किनको वरण करना है, हमें भगवान का वरण करना है। क्यों, कृष्ण रक्षेति इति विश्वास, इति विश्वास, ये विश्वास करो भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और गीता में भगवान ने कहा है, क्या कहा है, योग क्षेमा भगवान क्या नाम है, अनन्य चिंतयंतो मां ये जना परिपासते तेसाम नित्य अवयुक्तानां योग क्षेम बहामि हम, योग क्षेम बहामि अहम, अहम योग क्षेम बहामि, मैं उनका योग क्षेम बहन करता हूं। योग का मतलब होता है उनकी जरूरत को पूरा करना, और क्षेम का मतलब होता है उसे प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा प्रदान करना। भगवान जो है सबको सुरक्षा दे सकते हैं, और कोई संसार में क्या सुरक्षा देगा। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया है, दुनिया पहले ही मरी पड़ी है, इसलिए आप देखेंगे उत्तरा के प्रसंग में जब देखेंगे, जब ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा गया तो वह जब उत्तरा की तरफ आ रहा था, तो उत्तरा हालांकि उनके पति थे और भी बहुत सारा जो है सैन्य बल खड़ा था, किसी से भी उसने चाह नहीं की, सीधी वो किसके पास में गई, भगवान के पास में गई, क्योंकि उत्तरा ये जानती थी यत्र मृत्यु परस्परम, ये तो पहले से ही मृत्यु के गाल में पड़े हैं, ये भला मेरी सुरक्षा क्या प्रदान करेंगे। इसलिए उत्तरा ने इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधे किसी के शरण में चली गई, भगवान की शरण में गई, कृष्ण कृष्ण द्वारका वासी, भगवान द्वारकाधीश को तुरंत उन्होंने कहा प्रभु पाए मां पाए मां, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है हमें क्या करना चाहिए वो करना, 5 मिनट में मैं समाप्त करूंगा, आप लोग जो है समय तो निकल ही रहा है। शुक्ति प्रबोधयो संधौ आत्मनो गतिमात्मदृक् पश्य पश्यन् बंधम च मोचम च माया मात्रम न वस्तुतः। सुप्ति प्रबोधयो और संधौ, सुप्ति का मतलब सोया हुआ, प्रबोध का मतलब होता है जागा हुआ, और संध्या का मतलब होता है इन दोनों के बीच की अवस्था का, ना सोया है ना जगा। बोल रहे हैं आत्मनो गतिम आत्मदृक्, आत्मन गतिम आत्मदृक, जो आत्मा की गति है, समझ रहे ना, ये तीनों अवस्था में यदि कोई व्यक्ति आत्मगति को देखता है, पश्यम बंध्यम च मोक्षम च, यदि इसको देख रहा है, आत्मा की गति को देख रहा है, क्या देख रहा है कि आत्मा यदि भगवान के भजन में लगी है तो ठीक से है, वो जिंदा है, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो पश्यम बंधम च मोक्षम च माया मात्रम च वस्तुतः, नहीं तो सब कुछ, चाहे वो जागृत अवस्था में हो, चाहे सोई अवस्था में हो या जो है बीच की अवस्था में हो, ये सब माया का खेल है। समझ रहे ना, ये सब माया समझना चाहिए। अर्थात प्रभुपाद जी एक बार फिर से सुन लो प्रभुपाद जी, अचेतन अवस्था अज्ञान अंधकार या भौतिक जगत के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अचेतन वो तो मरा पड़ा ही है, चेतना है ही नहीं, है कि नहीं? अचेतन का मतलब सोया पड़ा हुआ है। दूसरे जो है या अज्ञानता में पशु जीवन जैसा, जिसको कुछ मालूम ही नहीं है, खाने पीने तक ही वो सीमित है। दूसरे है क्या बोलते हैं, अच्छा चेतन अवस्था में मनुष्य जागृत रहता है, चेतन अवस्था में मनुष्य जागृत है, तो जागृत का मतलब जागने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। केवल सांस चल रही हो, हमारी आंखें खुली हो, तो हम बहुत जगे हैं। नहीं नहीं नहीं, जगने ये अवस्था जागृत अवस्था नहीं है हमारी। यदि अवस्था जागृत अवस्था होती तो फिर चैतन्य महाप्रभु क्यों बोलते थे, क्या बोलते थे? जीव जागो गौरा चंद्र बोले, है गौरा चंद्र बोले, जागो जीव। अरे भाई हम तो जागे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं क्या, आंखें खुली है? अरे भाई नहीं नहीं है, ये जागने से काम नहीं होगा। उठो और भजन में लगो। भजन हो रहा है कि नहीं ठीक से, तब जो है आप जागे हो, नहीं तो माया में पड़े हो। ये सब माया की अवस्था है, जगे हुए भी कभी कभी मरे हुए ही है। जैसे उदाहरण देते हैं उसकी धोंकनी, वो सांस लेती है कि नहीं लेती है, तो इसका मतलब वो पूरी कॉन्शस में है? नहीं नहीं है। तो इसलिए सिद्धांत यहां ये बताना चाह रहे हैं कि बैलू कुछ भी नहीं है, कि आप जगे हैं कि सोए हैं कि आप बीच की अवस्था में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है भगवान का भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं तात्पर्य में। यदि भजन हो रहा है तब जो है हमें क्या करना चाहिए, वास्तव में जानना चाहिए कि हम जगे हैं। यदि भजन नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए मृत अवस्था में। ये भक्ति ही भजन का मतलब होता है, सुनो भगवान के बारे में, ठीक से सुनते रहो, क्योंकि जो सुनेगा निश्चित रूप से वो भक्ति में दृढ़ होगा ही होगा। तो एक मिनट में मैं समाप्त करूंगा, 5 मिनट एक पे आंकड़ा चला जाएगा, ठीक है 3 मिनट में। तो बात उस समय की है जब दुंधकारी प्रेत के शरीर में चला गया था, ठीक है ना, उसको बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था, सब जगह मारा मारा भटक रहा था। तो गोकर्ण जी जब घूम घाम करके आए, रात्रि के समय सो रहे, तो वहां आकर के जो है वो रोने चिल्लाने लगा। तब जो है गोकर्ण जी देखा, भाई क्या बात है, आप इतना दुखी क्यों है? तो उन्होंने कहा कि भैया पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं आपका ही भाई हूं। अहम भ्राता तुदीयोस्मि, अहम भ्राता तुदीयोस्मि दुंधकारी इति नामतः, नाम मेरा दुंधकारी है। क्या हुआ भाई? तो क्या उन्होंने बताया कि देखो ऐसे मैंने अपने बुरे कर्म के कारण जो है ब्राह्मण था, लेकिन अब जो है प्रेत के शरीर में है, मेरा उद्धार करो। अरे भाई तेरा उद्धार हम कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई मैं उद्धार करूंगा, कैसे करूंगा, चलो देखता हूं पूछता हूं भाई, सुबह कल परसों आना तू, कल मैं पता करूंगा, तब जा करके तेरे के बारे में बताएंगे। तो गोकर्ण जी ने क्या किया था, सूर्य की गति को रोक करके सूर्य से पूछा मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तो श्रीमद भागवतम कथा वाचनम कुरु, उन्होंने कहा कि भागवत सुनाओ, उनको कथा सुनाओ, तब कथा मृतम, वो मरा हुआ जो है प्रेत शरीर में, प्रेत शरीर उसका ठीक से शरीर मिल जाएगा यदि कथा को ठीक से सुनेगा। तो उन्होंने कथा सुनाई, परिणाम ये हुआ 7वें दिन दुंधकारी जो है दिव्य रूप धरो जाता, तुलसी धाम मंडिता, पीत वासा घन श्याम मुकटी कुंडलान्विता। तो 7वां दिन कब हुआ, जैसे कथा का 7वें दिन एंड हुआ, तो उन्होंने देखा कि जो दुंधकारी प्रेत के शरीर में था वो दिव्य रूप धरो जात, उसने जो है भगवत शरीर को प्राप्त कर लिया सबके सामने देखते ही देखते, और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम, उन्होंने देखा कि तुलसी की माला पहने हुए, पीतवास, पीत वस्त्र धारण किए हुए श्याम वर्ण है, कुंडल मकरा कुंडल पहने हैं और विमान आया, विमान में बैठ करके हरि बोल करते हुए वो आकाश में उड़ गया। तब जो है गोकर्ण जी ने कहा, अरे भाई आप अकेले को लेके जा रहे हैं, कथा तो सब सुन रहे थे। बोला नहीं नहीं, ये तो सब कोई सुप्त अवस्था में था, कोई जागृत था और कोई जो है सोया पड़ा था। ये थोड़ी कथा कोई सुन रहा था, यह कथा सुनते तो मैं सके लिए विमान लेकर के आया था। तो ये क्या कर रहे थे? बोला कोई सुन ही नहीं रहा था, बस प्रसाद की घंटी देख रहे, प्रभु जी कब बंद करेंगे। तब जो है उन्होंने कहा, भाई कुछ तो करो ना, अब जो है प्रसाद तैयार है तो कुछ तो हमको भी भगवत धाम जाने दो। बोला ठीक है, तुम सब सुनोगे ठीक से तो चले जाओगे। अगली बार उन्होंने कथा जो है कही और सारे व्यक्तियों ने ठीक से उस कथा को सुना, मन लगा के सुना, और इतने सारे विमान आ गए, सब चतुर्भुज रूप धारण करके सब भगवान के धाम को चले गए। कुत्ते बिल्ली तक, पशु पक्षी तक, यहाँ तक कीट पतंग और जो भी वृक्ष थे, वो जहां जहां तक गया था, वो सब चतुर्भुज रूप धारण करके सब भगवत धाम चले गए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इन अवस्थाओं से ऊपर आना चाहिए। अदृढ़म हृतम ज्ञानम, जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है वो टिकाऊ नहीं रहता। इसलिए ठीक से सुनो और भगवान का भजन करो, इसी जीवन में भगवत प्राप्ति। हरे कृष्णा। ठीक है, शिल प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की निताई गौर शीतानाथ प्रेमनंदे।